दिनभर तारीख 8 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं विनीत खरे। चीन में शेयर बाजार गिरे, मध्य जून से अब तक 30% की गिरावट, 1300 कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री पर लगी रोक, 9 करोड़ छोटे निवेशकों पर असर, भारत में भी शेयर बाजारों पर पड़ी मार। राष्ट्रगान पर कल्याण सिंह की टिप्पणी पर इतिहासकार ने कहा,
देश के जो कर्णधार लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, इसमें कहीं भी अंग्रेजी राजाओं और सम्राटों की तो चर्चा ही नहीं है।
हेमा मालिनी की कार से टक्कर में मृत बच्ची के पिता ने सांसद के आरोप को गलत बताया।
में अगर मेरी कोई गलती हो तो वो बताए क्या गलती, तो वो चीज ठीक है, बाकी सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि छोटी सोच, हमें बहुत दुख हुआ है, परिवार को बहुत दुख हुआ है।
साथ में साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। चीनी हुकूमत ने सरकारी कंपनियों से बाजार से शेयर की बड़ी खरीदारी करने को कहा है। बीमा कंपनियां अपने पास अधिक शेयर बनाए रख सकती हैं और वित्तीय कंपनियों को ज्यादा कर्ज की सुविधा मुहैया करवाने का वादा किया गया है। सरकार ने यह कदम बुधवार को शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद लिया। शंघाई कंपोजिट फंड खुलने के साथ ही सीधा 8% गिर गया था, बावजूद इसके बाजार 5.9% की गिरावट के साथ बंद हुआ। शंघाई शेयर सूचकांक जून के बाद से अब तक 30% नीचे चुका है। ग्रीस में जारी कर्ज संकट का कई बाजारों पर असर पड़ा है, लेकिन चीन में यह भूचाल आंतरिक कारणों से है। आर्थिक प्रगति धीमी हुई है और सरकार के जरिए बैंकों में लाए जाने वाले सुधारों को लेकर आम लोगों में गलतफहमियां हैं। ग्रीस ने कर्ज संकट से जूझने के लिए यूरोजोन से 3 सालों का एक विशेष सहायता फंड मांगा है। यह उस प्रस्ताव का पहला हिस्सा है जिसे रविवार तक फाइनल कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि ग्रीस एक ठोस प्रस्ताव गुरुवार तक पेश कर देगा। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जॉन क्लाउड जंकन के मुताबिक ग्रीस को यूरोजोन से बाहर करने के लिए एक योजना तैयार है। पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने अफगानिस्तानी हुकूमत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक करवाई है। पाकिस्तान का कहना है कि यह बैठक इस्लामाबाद के पास मौजूद एक पहाड़ी शहर में हुई और बैठक में चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। दोनों पक्षों ने शांति की ज़रूरत को महसूस किया है और कहा है कि वो रमज़ान के बाद फिर मिलेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शकीब मुस्तगनी ने कहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के बीच शांति की स्थापना को लेकर कल देर रात में बातचीत हुई। आधिकारिक तौर पर यह मीटिंग पहली बार हुई है और इस बात की उम्मीद जगाती है कि यह ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करेगी जिससे मुल्क में शांति की स्थापना हो सके। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। म्यांमार में चुनावों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से कहा है कि आम चुनाव 8 नवम्बर को होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा बुधवार देर रात को होगी। वहाँ साल 2010 से जो सुधार जारी हैं उसके तहत सैनिक शासन की जगह सेना समर्थित नागरिक सरकार बनाई गई है। चुनाव में मुख्य संघर्ष सत्तारूढ़ यूएसडीपी और आंग शांग सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के बीच है। सूची के दल ने 1990 में चुनाव जीता था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि जो गर्भवती औरतें शौचालय का इस्तेमाल नहीं करती हैं उन्हें समय से पहले बच्चा जन्मने और गर्भपात का अधिक खतरा रहता है। शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए उड़ीसा में करीब 700 औरतों का इंटरव्यू किया था। सूबे में घर और शौचालय का अनुपात मुल्क भर में सबसे कम है। ये शोध अमरीका के एक मेडिकल जर्नल में छपा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। चीन में सरकारी कोशिशों के बावजूद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। हांगकांग और शंघाई के प्रमुख शेयर बाजारों में 6% की गिरावट दर्ज की गई। शंघाई और शेंजेन शेयर बाजारों में गिरावट के कारण करीब 1000 कंपनियों से ज़्यादा के जो हैं उनका कारोबार बंद करना पड़ा है। जून के मध्य से अब तक चीन के शेयर बाजारों में 30% की गिरावट दर्ज की गई है। 1300 कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री को रोकना पड़ा है। करीब 9 करोड़ निवेशकों पर इस गिरावट की मार पड़ी है। विश्लेषकों के मुताबिक शेयर बाजार की अस्थिरता से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। मैंने इन चिंताओं पर बात की बीजिंग में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सैबल दास गुप्ता से।
विनीत जी, मार्केट टैंक होने से पहले 10 महीना तक वो आसमान पे बढ़ता ही रहा और इतना बढ़ा कि 100% 10 महीने में जून 12 तक वो बढ़ा है और पहुंचा है। और लोगों ने धूम पैसा कमाया है। टैक्सी ड्राइवरों ने रोल्स रॉयस ही खरीदी है, रोल्स रॉयस को क्रैश करवाने का मजा लिया है, और उसका एग्जैक्ट विपरीत चाइनीज का अर्थतंत्र जा रहा था कि वो नीचे गिर रहा था। लेकिन ये माना, अभी ये माना जा रहा है कि क्रैश के बाद इकोनॉमिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकारी इसको अंधाधुंध बढ़ा रही थी कि अपना इमेज सुधारने के लिए, ये बताने के लिए कि विदेशी निवेशक आ सकते हैं, कोई परेशानी है नहीं, उस वक्त जबकि उनका इकोनॉमी गिर रहा था। अब वो क्रैश हुआ है,
ये जो मार्केट क्रैश हुआ है, और बहुत सारे जो निवेशक हैं चीन में, वो छोटे निवेशक हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में से बड़ा पैसा लगाया था, उन पर क्या असर पड़ेगा? और क्या ये कहना सही होगा कि जो स्टॉक मार्केट है क्रैश होना, उसका जो चीन की अर्थव्यवस्था पर एक रिफ्लेक्शन है, उस पर भी असर पड़ सकता है?
भाई आप अगर आम आदमी है और आपके जो दो चार पैसे बचत होते हैं महीने में साल में, उसको आप कहाँ लगाएंगे? आप लगाएंगे तो बैंक में, जमीन पे, स्टॉक मार्केट में, इंश्योरेंस। लेकिन आज चीन में ये हालत हुई है कि बैंक आपको इतना कम 3-3.5% इंटरेस्ट दे रही है जिससे कुछ नहीं होता है, और जमीन पे आप लगाते थे तो जमीन का मार्केट तो एकदम खत्म हो गया है, बिल्कुल बॉटम आउट हो गया है, बिल्कुल भाव गिर गया है जो सरकार ने गिरवाया है। अब रह गया स्टॉक मार्केट, तो लोग अंधाधुन पागलों की तरह स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करने लगे। अब बेचारे स्टॉक मार्केट में गए तो एक ही साल में 7 करोड़ नए निवेशक स्टॉक मार्केट में, जहाँ चीनी कभी जाते नहीं थे, वो पैदा हो गए। अब ये सारे बुरे फंसे हैं। देखिए, आप कैसीनो की तरह लोगों को दरवाजा खोल दिया, बुला लिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, अब बेचारे फंसे हुए हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट के सारे शेयर लॉकडाउन हो गए हैं, 70% शेयर लॉक हो गए हैं। अब उसको बेच ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रहे, और जो 30% बचा है वो तो 10 रुपए का खरीदा हुआ चीज 3 रुपए में बिक रहा है, तो उसके पास रोने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ये ना समझिए कि बहुत सोफिस्टिकेटेड निवेशक है जो सब कुछ जानते हैं, वो बिल्कुल सीधे साधे गाँव के लोग हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, ऑफिस के कर्मचारी हैं, सब पूरी तरह से फंसे हैं। सवाल ये है कि यहाँ राजनीति का सवाल आता है कि सरकार को इंटरफियर करके परिस्थिति को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सरकार की छवि पर बहुत बड़ा भयानक बुरा असर पड़ सकता है।
बीजिंग से ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सैबल दास गुप्ता। चीन के बाजारों में अस्थिरता के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज 484 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। चीन की अस्थिरता के क्या कारण हैं और भारत को इससे कितनी चिंता होनी चाहिए? सलमान रावी ने यही सवाल रखा आर्थिक विश्लेषक नागेश कुमार के सामने।
असल में जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जितना जिस कंट्री की इंटरडिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज पे ज़्यादा है, उतना ही वो वल्नरेबल हो जाते हैं। चाइना का आपने मालूम है कि जो इकोनॉमी पिछले 15-20 सालों में जो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और विकास हुआ है, वो काफ़ी हद तक दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट्स पे डिपेंडेंट था। मतलब एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, जो पेंशन फंड्स एंड ऑल दैट, वो तो आए, लेकिन साथ में उनका जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इकोनॉमी जो बनी, तो उसमें उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो दुनिया में कुछ भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उससे उसमें उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे उनका स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है। भारत की स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी है, और जो इकोनॉमी है वो एक तो पहली बात के मैक्रो फंडामेंटल्स जिन्हें कहते हैं, उसमें आती हैं चीज़ें कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसा है, आपकी इंडेटेडनेस कैसी है, आपके करंट अकाउंट बैलेंस कैसे सिचुएशन है, आपकी ग्रोथ रेट कैसी है। तो उन सारे पैरामीटर्स में इंडियन इकोनॉमी इस समय बहुत अच्छी सिचुएशन में लग रही है, और सारे जितने एनालिस्ट हैं दुनिया में, किसी से भी आप बात करें, सबका एक यूनिवर्सल व्यू है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अपस्विंग पर है, और वो जो मतलब जो मंदी का जो दौर था वो पीछे छूट गया।
चीन के शेयर बाजारों में आई भारी गिरावट और भारत पर होने वाले असर पर ये थे आर्थिक विश्लेषक नागेश कुमार। और चीन के बाद चलते हैं ब्रसल्स में यूरोजोन के नेताओं की आपात बैठक में ग्रीस को नए प्रस्ताव पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय दिए जाने के बाद अब ग्रीस सरकार तेजी से नए प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में लगी है। इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यूरोजोन के नेताओं को भरोसा दिलाया है अब रविवार को यूरोपीय संघ के सभी 28 सदस्यों की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं समीरात्मज मिश्र।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने यूरोपीय संसद से कहा है कि कर्ज संकट से निपटने के लिए ग्रीस एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। उनका कहना था कि रविवार को इस मुद्दे पर हुए जनमत संग्रह के परिणामों ने उन्हें इसका हल निकालने की मजबूती दी है। उनका कहना था कि ग्रीस कर्ज संकट का ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रहा है जो सामाजिक तौर पर न्यायपूर्ण और आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो। जनमत संग्रह में ग्रीस के लोगों से मिले बहुमत की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। ग्रीस के लोगों ने उस समय अपनी साहसिक प्रतिक्रिया दी जबकि बैंकों के बंद होने का जबरदस्त खतरा था। मीडिया में भी ग्रीस के बारे में काफी नकारात्मक अटकलें लगाई जा रही थीं। बताया जा रहा था कि अब यूरोप से बातचीत का कोई फायदा नहीं, ग्रीस को यूरोजोन से बाहर होना ही पड़ेगा। ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के शब्द। स्ट्रासबर्ग में स्थित यूरोपीय संसद में सिप्रास का जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही वो अंदर गए लोगों ने तालियों से स्वागत किया। उधर जर्मनी के एक सांसद और ग्रीन पार्टी के सह अध्यक्ष जेम ओजीर मियर का कहना था कि ग्रीस को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ग्रीस एक विफल देश बन जाए और वहाँ की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि यदि ग्रीस एक समानांतर मुद्रा अपना भी लेता है, जिसकी कि अगले हफ्ते तक उम्मीद भी है, फिर भी ग्रीस यूरोजोन का सदस्य बना रहेगा। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ग्रीस की विदेश नीति आजकल रूस के साथ बेहतर तालमेल बना रही है। जर्मनी के एक सांसद के शब्द। यूरोजोन के नेताओं ने नया मसौदा पेश करने के लिए ग्रीस को 5 दिन का समय दिया है। ब्रसेल्स में इस संबंध में चल रही बैठक के चेयरमैन डोनाल्ड टस्क का कहना था कि ये समय सीमा ग्रीस के लिए आखिरी मौका है। उनका यह भी कहना था कि ये यूरोपीय संघ के इतिहास में परीक्षा की घड़ी है।
The stark reality is that we have only 5 days left to find the ultimate agreement.
हमारे पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इसी के भीतर कोई अंतिम समझौता करना है। अभी तक मैं समय सीमा को लेकर बात करने से बच रहा था, लेकिन अब मुझे इस पर जोर देना पड़ रहा है कि अंतिम समय सीमा इस हफ्ते खत्म हो रही है। इस संकट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं और हम सभी को मिलकर ही इसका हल भी निकालना है। डोनाल्ड टस्क के शब्द। वहीं जानकारों का कहना है कि ग्रीस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो कर्जदाताओं की शुरुआती अदायगी की राशि को कैसे बनाए रखता है। बीबीसी से बातचीत में अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी कहते हैं कि जो भी समझौता हो उसे इतना लचीला तो होना ही चाहिए ताकि ग्रीस की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। मेरा मानना है कि ग्रीस से कहा जाए कि जब तक वो मंदी के दौर से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो एक अतिरिक्त राशि अपने पास रखे जो कि उसके जीडीपी के 1% या उससे कम भी हो सकती है। आज ग्रीस की जीडीपी साल 2008 की तुलना में 25% से भी कम रह गई है और ऐसी स्थिति में ग्रीस से ज्यादा अतिरिक्त राशि के लिए कहा भी नहीं जा सकता। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी के शब्द। जानकारों का कहना है कि ग्रीस का दिवालियापन और ग्रीस की बैंकिंग व्यवस्था का पूरी तरह ढह जाना पूरे यूरोप को प्रभावित कर सकता है। यूरोजोन को उम्मीद थी कि ग्रीस बुधवार तक अपने प्रस्ताव पेश कर देगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास का भी कहना था कि वो इस हफ्ते तक यूरोजोन की तय समय सीमा के भीतर कोई ठोस प्रस्ताव पेश करने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ग्रीस को रविवार तक का समय मिल गया है।
ये रिपोर्ट पेश की थी समीरात्मज मिश्र ने। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उसकी ताकतवर देशों के साथ बातचीत की मियाद एक बार फिर बढ़ गई है। इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अलग थलग रहा देश ईरान बातचीत की मेज पर है, ये भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। ईरान के साथ बातचीत दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखती है, ईरान से जुड़े कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है निखिल रंजन ने इस बार की दुनिया जहान में।
दुनिया जहान।
उन लोगों के एटीट्यूड से पता चल रहा है कि ये सारा सीरियस टॉक हो रहा है और कोई पॉजिटिव नतीजा आने वाला है।
अगर बातचीत सफल नहीं होगा तो उसमें फायदा ज्यादा इस ग्रुप का होगा जो कंजर्वेटिव ग्रुप।
अगर आप तेहरान की सड़कों पर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे ईरान 35 साल पहले रुका पड़ा है।
ईरान एक बहुत बड़ा की इम्पोर्टेंट प्लेयर रीजनल पॉलिटिक्स में, अभी सीरिया में जो हो रहा है, इराक में जो हो रहा है, सेंट्रल एशिया में, इसके लिए सारे बातचीत का रास्ता निकल सकता।
ईरानियंस बहुत ज़्यादा नेशनलिस्टिक हैं। जब ईरानियंस ने अपने लैंग्वेज को चेंज किया, तब भी उन्होंने लैंग्वेज रहने दिया, सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज कर दिया।
दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली देश ईरान के साथ जिस बातचीत में पूरी तन्मयता से जुटे हैं, जानकार उसी के बारे में ये राय जता रहे हैं। महमूद अहमदी नेजाद के नेतृत्व में अलग थलग पड़ता हुआ जो देश तब के अमरीकी राष्ट्रपति की नजरों में शैतान की धुरी बन गया था, वही ईरान हसन रूहानी के साथ बातचीत के लिए पश्चिमी देशों की मेज पर है। इन देशों में अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जर्मनी शामिल हैं। बीते 3.5 दशकों से ईरान में सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला खमेनेई के मर्जी के बगैर जब कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ, तो फिर ये बातचीत कैसे संभव हो सकी? इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स के फेलो डॉक्टर आसिफ शोजा।
इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, बहुत हद तक चीज़ें तभी डिसाइडेड हो जाती हैं। जहाँ तक एक रिफॉर्मिस्ट रूहानी के इलेक्शन का सवाल है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जैसे सुप्रीम लीडर, गार्डियन काउंसिल्स, वो लोग भी चाहते थे कि एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट आए जो कि वेस्टर्न पावर से कंफर्टेबल हो बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये लोग का एक्सपीरियंस जो रहा पिछले 8 सालों का अहमदिनेजाद के एरा के ज़माने में, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन पॉलिसीज उसने अपनाई, जिसकी वजह से ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है बहुत ख़राब हो गया।
इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान बाकी दुनिया से कट सा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ईरान की सत्ता के साथ सहज नहीं और इसका खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। प्रतिबंधों ने यहाँ के अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ईरानी लोग हर घड़ी इन प्रतिबंधों की आंच को महसूस करते हैं।
एक है सिंपल इंसान की ज़रूरत है, मेडिसिन। अगर सैंक्शन है और ज़रूरी मेडिसिन की ज़रूरत है, ईरान के सॉइल में बाहर से वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज़ है, दिन रात लोग सड़क पे एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, इन सब चीज़ों के लिए ऑटोमोबाइल की ज़रूरत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ईरान की बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, लेकिन उसके लिए स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है। ये सारे मैकेनिक या कार यूज़ करने वाले, इन लोगों को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहा है। वहाँ की छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो आप देखेंगे, वो सारे 30-35 साल पुरानी चीज़ें हैं।
हालांकि इन मुश्किलों के बाद भी ये देश ना तो दिवालिया हुआ है और ना ही कर्ज में डूबा है। कुछ पुरानी संस्कृति और इतिहास का असर और कुछ अपने देश के प्रति उमड़ते जज्बात, आखिर कोई तो बात है कि इतने भीषण प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की हालत ग्रीस जैसी नहीं हुई।
ईरानियन लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और हम लोग देखते हैं कि पिछले 35 सालों में डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ सैंक्शन, इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को संभाल कर रखा है। वहाँ पे आप लोगों को देखेंगे अपने काम में लगे हैं, किसी के पास मिलने जाएंगे तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं, अपॉइंटमेंट में जो एकदम टाइम है ऑन द डॉट पर मिलेंगे। कहीं बाज़ार में आप नहीं देंगे भीड़ भाड़ लगा कर वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
ईरान ने अपनी तरफ से बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देश ये मानने को तैयार नहीं हुए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के लिए नहीं है। दुनिया में ईरान अकेला नहीं जिसने परमाणु ऊर्जा हासिल करने की कोशिश की हो, तो फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही इतनी हाय तौबा क्यों? JNU में मध्य एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर बंशीधर प्रधान।
ये इसराइल का प्लॉय है, इसराइल जो खुद विपन्न रखा है, वारंट तो 100-200 कम से कम उनके पास होगा ही है, इसी को सब जानते हैं इसराइल के पास है। इसराइल ये भी नहीं चाहता, क्योंकि ईरान अगर जब इसमें कामयाब हो जाएगा तो नेक्स्ट डे ईरान ये भी बोल सकता कि हम पे आप पाबंदी लगाए न्यूक्लियर वेपन से, दूसरे पावर को क्यों नहीं लगा रहे। इसलिए ईरान हर वक्त ये एक प्रपोजल दे रहा है न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन वेस्ट एशिया करने के लिए।
प्रतिबंधों के जरिए ताकतवर देशों ने वो सारे उपाय किए जिनसे ईरान को झुकाया जा सके, तो फिर अब बातचीत की याद कैसे आ गई? क्या प्रतिबंध नाकाम हो गए या फिर दुनिया को ईरान की जरूरत आ पड़ी है? प्रोफेसर बंशीधर प्रधान।
अभी सीरिया में जो हो रहा है, इराक में जो हो रहा है, सेंट्रल एशिया में, इसके लिए सारे बातचीत का रास्ता निकल सकता, क्योंकि बिना ईरान आपका रीजनल प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होगा एक्सटर्नल पावर्स के लिए। ईरान इज अ की प्लेयर इन द रीजन। अभी जो भी हो रहा है कि अब यमन में जो भी हो रहा, जो भी रीजनल जो टर्मोइल चल रहा है, इसमें ईरान के साथ बातचीत करके ईरान का मेडिएशन के साथ बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है पीसफुल वेज में, सेटलमेंट के।
ईरान की अपनी अहमियत है और ये देश अपने बारे में इस सच्चाई को जानता है, बातचीत की गंभीर कोशिश बता रही है कि ताकतवर देशों को भी इस बात का एहसास हो रहा है। ईरान के साथ बातचीत की मियाद दो बार पहले ही बढ़ाई जा चुकी है और जरूरत पड़ी तो शायद एक दो बार और बढ़ा दी जाए, पर सबकी नज़र करार की शर्तों पर है। ऐसा करार जो ईरान को नई हवा की ताजगी और दुनिया को शाहनामा का देश दिखाने का दरवाजा खोले। निखिल रंजन, बीबीसी, दिल्ली।
राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय गीत में बदलाव की बात कहकर एक विवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उनकी प्रशंसा में राष्ट्रगीत में अधिनायक का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि अधिनायक की जगह मनदायक या मंगलदायक का प्रयोग बेहतर होगा। इस विवाद के कारणों को समझने के लिए मैंने इतिहासकार एम राजीव लोचन से संपर्क किया।
जॉर्ज फिफ्थ के प्रेज में बातें जरूर कही गई थी कलकत्ता सेशन कांग्रेस में, पर वो उनके जो फेवर में जो गाना गाया गया था वो बिल्कुल एक अलग गाना था, वो ये वाला नहीं था। तो एक तो लोग इसको भूल जाते हैं पूरी तरह से। दूसरी जो इसमें बात आती है वो ये आती है कि राष्ट्रवादिता के बारे में कहीं ना कहीं हमारे देश में मान्यता है कि जब तक खूंखार राष्ट्रवादिता ना हो, जब तक दुश्मनों को खत्म ना कर देने की बात कही जाए, तब तक हम उसको राष्ट्रवादिता नहीं मानते हैं। तो ये जो एक डिलेमा हमारे देश में रहा है कि हम किस तरह की राष्ट्रवादिता माने, इस डिलेमा के कारण कई बार लोग इस गाने के बारे में कहते हैं, जनगण मन के बारे में कहते हैं कि हो सकता है जनगण मन का संदर्भ कुछ और रहा हो। जनगण मन का कोई दूसरा संदर्भ नहीं था, संदर्भ इसका बड़ा साफ था। ये देश के बारे में लिखा गया था, देश की जनता के बारे में लिखा गया था, देश के भाग्य विधाता के बारे में लिखा गया था। इसमें बड़े साफ शब्दों में हम केवल पहला स्टेंजा पढ़ते हैं ना आमतौर पे, यदि इसके बाकी जो चार स्टेंजा हैं उनको भी पढ़ लें तो इसमें बड़ा साफ पता चल जाता है कि ये एक भजन नुमा है जिसमें साफ लिखा गया है कि देश के लोगों के बारे में बात हो रही है, देश के जो कर्णधार लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। इसमें कहीं भी अंग्रेजी राजाओं और सम्राटों की तो चर्चा ही नहीं है।
आखिर विवाद शुरू किसने किया?
ये विवाद तो शुरू हो गया था 1913-1914 में ही। 1913-1914 में ही जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है उसी के साथ साथ ये बात निकल कर आती है कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कैसे हैंडल किया जाए। तो उस वक्त कुछ लोगों ने ये बात उठानी शुरू कर दी थी कि हो सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गाना है वो ये इंडिकेट करता है कि हम अंग्रेजों की अधीन और उन अंग्रेजों की अधीनता हमें पसंद है। पर जब खिलाफत मूवमेंट निकल कर आया और खिलाफत मूवमेंट में साफ साफ कहा गया कि अंग्रेजों की अधीनता हमें नहीं पसंद है, और जब गांधी जी आया, गांधी जी ने सबसे पहली बार ये कहा कि हमें अंग्रेजों के साथ लड़ाई करके काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद अंग्रेजों के साथ छीना झपटी करने वाला राष्ट्रवाद नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद हम आराम से अंग्रेजों के साथ चर्चा करके और अंग्रेजों को समझा कर कि उन्हें इस देश को छोड़ देना चाहिए भले मानस के जैसे, ये बात तब से निकल कर आती है।
भारत भाग्य विधाता पर भी कई लोग उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये जो दो तीन इंटरप्रिटेशन इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, भाग्य विधाता तो भगवान होता है ना, भगवान और भगवान वो होता है जो कि लोगों को भाग्य देता है। तो हमारे यहाँ भगवान का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से चला रहा है, साथ ही साथ हम भगवान को सर्वशक्तिमान भी मानते हैं। और यदि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करें जैसा कि हम करना शुरू कर दिए थे 20वीं सदी की शुरुआत में, तो फिर जनता पे भी विश्वास करना पड़ता है कि जनता को लेकर हमें साथ चलना पड़ेगा।
ये थे एम राजीव लोचन। अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी की कार से हुई जबरदस्त टक्कर के बाद अपनी 2 साल की बेटी को खोने वाले हनुमान खंडेलवाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं, पर सांसद द्वारा बुधवार को किए गए ट्वीट से वो आहत हैं। हेमा मालिनी ने अपने ट्वीट में कहा था कि अगर लड़की के पिता ने ट्रैफिक नियमों का पालन किया होता तो दुर्घटना होने से बचाया जा सकता था और बच्ची की जान बच सकती थी। आभा शर्मा ने हनुमान खंडेलवाल और बच्ची की दादी से बात की।
मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद जी 2-3 दिन से यहीं थी जयपुर में, तब भी ये चीज़ बोल सकती थी। आज वहाँ जाने के बाद में जब वो बॉम्बे बैठी हैं तो अपने बचाव के लिए कई बातें कह रही है। मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि देखने वाले पुलिस वाले और मीडिया वाले, गाड़ी की कंडीशन सबको पता है, स्पीड सबको पता है, नेशनल हाईवे पर कितनी स्पीड गाड़ी की होनी चाहिए वो उनको पता है, 150-160 उनकी स्पीड बता रहे हैं सब पुलिस वाले, सब 160 बता रहे हैं। मैं जीरो स्पीड पे था, इसके अलावा कोई मैंने ऐसे ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करा। रोड पे मेरे को जाना ही था, मेरे आगे एक गाड़ी और क्रॉस हुई है, रोड देख के क्रॉस करा है, आंधी की तरह गाड़ी आ गई, टकरा गई। इसमें अगर मेरी कोई गलती हो तो वो बताएं क्या गलती है मेरी, तो वो चीज़ ठीक है। बाकी सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि, इतनी छोटी सोच, हमें बहुत दुख हुआ है, परिवार को बहुत दुख हुआ है। काम करने वाला मैं ही हूँ, फैमिली में मदर है मेरी, ना ब्रदर है, फादर 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके, डेली कमाता था, परिवार खर्चा चलाता, बहुत मुश्किल में आ जाएगी फैमिली, खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे मैम।
नमस्कार, आप हनुमान खंडेलवाल जी की माता जी हैं, पोती आपकी इस हादसे में ख़त्म हो गई और माँ को पहले बताया भी नहीं था, तो आप उसके अंतिम संस्कार के बाद आई?
क्योंकि मैं दौसा आ गई थी उस टाइम पे, दौसा से, और डॉक्टर लोग बोले लड़की को देंगे, तो भाई किसको देंगे, तो इसलिए मैं वापस लालसोट 3 बजे चली गई थी दौसा से। तो मेरे को दूसरे दिन गुड़िया को लाना था, दाग संस्कार तो करना ही करना था, तो इस चक्कर में मैं लालसोट वापस चले गए, गुड़िया को लेके आए दौसा से, पोती को दाग संस्कार किया, उसका दाग संस्कार करके फिर मैं साथ के साथ जयपुर आई। तो मैंने देखा तो ये हादसे में बहुत ही हादसा हुआ, देखा नहीं गया। अब पूरा परिवार मेरे आदमी नहीं है, बेटा है, जो बेटा छोटी मोटा काम धंधा करता है, पिंचर विंचर निकालता है, साइकिल की दुकान है, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। तो अब बाकी बात यह है, ये जो भी कुछ है तो पर तो सपोर्ट तो देना चाहिए ना, सरकार को भी करनी चाहिए थी, सरकार ने तो हेमा मालिन जी तो कर सकती थी ना, लेकिन वो एक बार संपर्क करती है।
हनुमान खंडेलवाल, उनकी बच्ची की दादी से बात की थी आभा शर्मा ने। और अब विंबलडन के अपडेट के लिए सीधे चलते हैं लंदन अपूर्व कृष्ण के पास। अपूर्व, बारिश का असर, मैं ट्विटर फीड देख रहा हूं विंबलडन का, बारिश का असर फिर हुआ है मैचों पर?
बिल्कुल सही विनीत, आज पुरुषों के क्वार्टर फाइनल मैच हैं, 4 मैच होने हैं बड़े, और मौसम जो है उसमें बाधा डाल रहा है। 2 मैच अभी हो रहे थे उनमें बारिश के कारण खेल रुका हुआ है, और क्वार्टर फाइनल दिलचस्प है क्योंकि पहली चारों वरीयता के खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं इसमें। दूसरी सीड के रोजर फेडरर और तीसरी सीड के एंडी मरे, उनके मैच अभी हो रहे थे। और ब्रिटेन के एंडी मरे 2013 के विंबलडन विजेता, उनका मैच हो रहा था 56वीं सीड के कनाडा के वासेक पोस्पिल से, और मरे का पलड़ा थोड़ा भारी माना जा रहा था क्योंकि मरे और पोस्पिल इसके पहले 3 बार टकराए हैं और तीनों ही बार मरे की जीत हुई है। और मरे जहां 17वीं बार अपना ग्रैंड स्लैम का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, वहीं पोस्पिसिल के लिए ये कोई पहला क्वार्टर फाइनल था जिसमें वो पहुंचे। और इस मैच में जब खेल रुका उस समय तक मरे पहला सेट जीत गए थे और दूसरे सेट का मैच चल रहा था। दूसरा जो मैच हो रहा था वो रोजर फेडरर और फ्रांस के जील सीमो के बीच, जो 12वीं सीट के खिलाड़ी हैं, और फेडरर 7 बार विंबलडन और कुल 17 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और उनके विरोधी का ये केवल दूसरा बड़ा क्वार्टर फाइनल है। फेडरर आराम से इसमें पहला सेट जीत गया 6-3 से, लेकिन दूसरे सेट में स्कोर 6-5 था जब खेल रुकना पड़ा। और इन 2 मैचों के बाद दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी और पिछले साल के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच, उनकी टक्कर होगी क्रोएशिया के मारिन चिलिच से, जो यूएस ओपन के मौजूदा चैंपियन हैं, और दोनों खिलाड़ी इससे पहले 12 बार टकरा चुके हैं और सब में जोकोविच ही जीते हैं। पिछले साल भी दोनों टकराए थे इसी तरह से क्वार्टर फाइनल में, और जोकोविच ने आराम से उसमें मैच जीत लिया था जो 5 सेटों तक चला। और उसके बाद चौथा क्वार्टर फाइनल मैच आज होगा स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका और फ्रांस के रिचार्ड गास्क्वेट के बीच, दोनों इससे पहले 2 बार टकराए हैं और दोनों ही 1-1 बार जीत चुके हैं, और वावरिंका जहां 4थी सीट पर हैं वहीं गास्क्वेट 21वीं पर। और इस मैच, इन पुरुषों के क्वार्टर फाइनल के बाद एक और मैच आज भारत की खिलाड़ी सानिया मिर्जा का होना है, जो अपनी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ महिला डबल्स का क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी अगर मौसम ठीक रहता है तो भी।
चलिए, उम्मीद है कि जब आपसे हम दोबारा बात करें तो मौसम ठीक हो गया हो, बारिश रुक गई हो। बहुत शुक्रिया पूर्व लंदन से। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चीन में शंघाई कंपोजिट फंड आज 5.9% की गिरावट पर बंद हुआ। शंघाई कंपोजिट फंड खुलने के साथ ही 8% नीचे गिर गया था। शंघाई शेयर सूचकांक जून के बाद से अब तक 30% नीचे जा चुका है। पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि किया कि उसने अफगानिस्तानी हुकूमत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक करवाई है। म्यांमार में चुनाव से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से कहा है कि आम चुनाव 8 नवम्बर को होंगे, इसकी औपचारिक घोषणा आज किसी वक्त देर रात हो सकती है। ग्रीस ने कर्ज संकट से जूझने के लिए यूरोजोन से 3 सालों का एक विशेष सहायता फंड मांगा है। ये उस प्रस्ताव का पहला हिस्सा है जिसे रविवार तक फाइनल कर लिया जाएगा। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला है कि जो गर्भवती औरतें शौचालय का इस्तेमाल नहीं करती हैं उन्हें समय से पहले बच्चा जन्मने और गर्भपात का अधिक खतरा रहता है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को दीजिए अनुमति, स्टूडियो संभाला था कुणाल शर्मा ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।